अगला वाक्या, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इब्ने हिशाम को औरतों से अलहदगी से रोकना। साद बिन हिशाम ने रूमियों के ख़िलाफ़ जिहाद में शिरकत की गरज से अपनी बीवी को तलाक दे दी। नोट करें, एक एक जुमले पे गौर करें, जिहाद में जाना चाह रहे हैं और बीवी को तलाक दे दी। ये क्या तो क्या सारे तलाक दे दे कर जाए, कोई बात होगी ना। पढ़ते हैं, फिर मदीना तय्यबा आए ताकि अपनी गैर मनकूला जायदाद को फ़रोख करें। गैर मनकूला क्या होती है? पैसा तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं ना, तो ज़मीन तो नहीं कैरी कर सकते, तो प्रॉपर्टी मुराद है इससे। गैर मनकूला जायदाद को फ़रोख करके सामान जंग खरीद कर जिहाद के लिए निकल जाएं। उन्होंने अपने इस प्रोग्राम का हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के रूबरू जिक्र किया तो उन्होंने ऐसा करने से मना फरमा दिया। इमाम अहमद ने साद बिन हिशाम से ये रिवायत नकल की है। वो कहते हैं कि मैं आयशा की खिदमत में हाज़िर हुआ रदियल्लाहु अन्हा और अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन, मैं औरतों से बग़र्ज़े जिहाद अलहदा होना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया, ऐसे ना करो, क्या तूने ये आयत करीमा नहीं पढ़ी जिसका मानी ये है कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की सूरत में बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बिलाशुबा रसूलुल्लाह ने शादी की और आपके यहाँ औलाद भी पैदा हुई। तो क्या बात पता चली कि साद बिन हशाम नेकी का इरादा कर रहे हैं जिहाद पे जाना, लेकिन तलाक इसलिए दे रहे हैं कि ना रहे बीवी, ना पीछे की जिम्मेदारियाँ और सारा अपना माल असबाब बेच के चल पड़ो। तो ये बात देखने में तो बड़ी प्यारी है। तसव्वुफ के नाम पे तो लोग वाह 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 सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन सुन्नत नहीं इसको मानती। तो आपने उनके उस अमल पर रोका और हज़रत आयशा ने कुरान की आयत में नबी सल्लम की जो इत्तबा है उसकी बात की। फिर दूसरे ही इसमें एक अमल की बात क्या है कि किसी अमल का ज़्यादा या मुशक्क़त वाला होना, ज़्यादा या मुशक्क़त वाला होना इसकी अजमत बल्कि इसकी शरई हैसियत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। कैसे? आज हम कहते हैं माशाल्लाह इतने नेक हैं, जिहाद में जाने के लिए बीवी को तलाक दे दी। लोग इस टोन में बात करेंगे ना, अमल बड़ा लग रहा है ना, कसरत का लग रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। तो पास हम ये सोचें ना, मुश्किल हालात में पढ़ के नेकी करेंगे तो ज़्यादा ही नेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इजी गोइंग, इन्हीं बीवी बच्चों में रह कर अल्लाह के रास्तों में निकलेंगे, ज़्यादा खैर होगी। लोग कहते हैं अल्लाह मुझे इन जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दे, फिर तो मैं दिन रात अल्लाह के रास्तों में भागूँ। कभी ऐसी दुआ ना करें, बोले इन्हीं के साथ अल्लाह मुझे लेके जाए, इन्हीं बच्चों को और इन्हीं शोहरों को हमारे दस्तों बाजू बना दे। मैं ऐसी सिस्टर्स को भी जानती हूँ, अकेली आई थी अपने रास्तों पे, थोड़ी मुखालफतें भी आईं, जो कुछ आता है वो आया, लेकिन आज बच्चे शोहर कोई काम हो सबसे पहले वो आगे मुआवन है। क्या मैं और आप अपने शोहर और अपने घर वालों के तावुन के बगैर कोई नेकी का काम कर सकते हैं? वल्लाह ही नहीं कर सकते। और अल्लाह कभी भी किसी को किसी से इस तरह मुहताज ना करे कि आप काम करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे। इनको साथ लगाएं, आपकी फ़ोर्स बनेंगे, आपकी ताकत बनेंगे। आपको क्या ज़रूरत है कुर्सियाँ सीधी करने की? आपके बच्चे करेंगे। आपको क्या ज़रूरत है बाहर से चीज़ें खरीद के लाने की? आपके बच्चे लाएंगे। क्यों? कि मामा मेरा हिस्सा डालें। मुझे एक फैमिली याद आ रही है, तो माशाल्लाह करीबी ताल्लुक होता है, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उनके बच्चे, बड़ा बच्चा कमाता है तो वो अपनी तरफ से कोई चीज़ लाएगा, मामा मेरा हिस्सा इस तरह डाल दें। जो बीच के बच्चे हैं वो जाएंगे और जाके हॉल सेट कराएंगे, मामा हमारा हिस्सा डल रहा है। शौहर का तो हिस्सा हर सूरत में डल ही रहा होता है, तो वो उनको सिर्फ कहना बताना पड़ता है ये करें। बच्चे कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अगर वो खुद कहेंगे तो कभी नहीं करेंगे। वो क्यों कर रहे? हमारा हिस्सा डल दे। बात समझ रहे? तो ये सोच बहुत बड़ी बात है, ये जवानों में ये सोच की बात है। एक हमारी बहुत अच्छी सिस्टर है, तो एक दफ़ा शायद कहीं वो गई ग्रोसरी के लिए, तो उन्होंने कोई चीज़ मेरे लिए भी कह दी। मुझसे पूछा, मुझे था कि ये जा रही है, मैंने भी बोल दिया। जब वापस आए मैंने बिल मांगा, कहने लगी इसका बिल नहीं आपसे लेना। मैंने कहा क्यों, आपको मेरी आदत पता है? कहती मैंने नहीं दिया उस्ताजा, ये मेरे जवान बच्चे ने जो अभी नया नया काम करना शुरू हुआ है उसने अपने कार्ड से पे किया है कि उस्ताजा के घर ये ग्रोसरी जाएगी तो मुझे सवाब मिल रहा है, तो आप मुझे इस पर ना रोकें। मुझे उस ग्रोसरी की तो क्या परवाह थी, मुझे इस सोच की खुशी हुई कि इस छोटे बच्चे के अपने दिल में आया है। बात समझ रहे? फिर वो मुझे मिला, फिर मैंने जो उसके साथ बात की वो अलग बात है, लेकिन ये सोच कितनी बड़ी बात है। आज हमारे बच्चों में ये सोच है कि ये कुर्सी इधर से उधर कर देंगे तो हमें सवाब भी होगा ना इस पर बैठने वाले का, अगर हम कोई खाना ले आएंगे। देखिए नेकियों में दूसरों को शामिल करें, डोंट बी स्टिंजी। मुझे अक्सर कोई कोई बात कहे ना कि लाए मैं आपका बैग पकड़ लूँ, बुक्स हैं, मैं कहती थी जरूर पकड़ी है, चलो मैं तो पकड़ती हूँ, अब आप पकड़ लें। अगर आपको उसमें कुरान रखा हुआ है, मेरा कंप्यूटर है, आप इधर से उधर जाएंगे, आपका हिस्सा डल जाएगा। जो लोग हमें छोड़ने ले जाने जाते हैं, हमारा ट्रिप चलते ही रहते हैं, तो हमेशा हम एयरपोर्ट पे जाने के वक्त उनको यही जुमला मैं तो बोलती हूँ कि आपने इस पूरे ट्रिप में अपना हिस्सा डाल लिया। अगर आप ना जाती या ना जाते तो वो जो वहाँ जाके 8-10 दर्स होने हैं, 2-3-4 दिन का प्रोग्राम होना है, उसमें आपका हिस्सा नहीं रहना था। तो ये जज्बा पैदा करें, अंदर से उठे। अपने बच्चों की मत ना मार दें, वो इंसान है, बहुत हसास हैं। आपसे अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, आपसे अच्छे फ़ोन के पैकेजेस उनको आते हैं, आपसे अच्छी बातें करते हैं बाहर खड़े होके। नेकियों के मामले में डल, कोई पता ही नहीं कि ये नेकी या गुनाह का काम है, हिस्सा डालना। तो हम नहीं रहेंगे तो कौन कहेगा उनको? आपके अपने अंदर जज्बे डलने चाहिए, और ये थॉट प्रवोकिंग प्रोसेस देना ये माँ का काम होता है। करवाएं काम। मेरी अपनी सास है, हम जब घर जाते हैं ना उनके, तो मेरे हस्बैंड है ना, थोड़े मामा पानी दूँ, हाँ दे दो बेटा, ये उठेंगे पानी का ग्लास ला के रख देंगे, वो थोड़ा सा पी के रख देंगे, फिर बातें कर रहे हैं, ये है वो है, मामा पानी लाऊं, हाँ बेटा ले आओ, बस जब उनके 3-4 ग्लास हो जाते हैं, वो क्या कहती हैं? कहती हैं मैं अपने बेटे को क्यों नेकी से महरूम करूँ, कहती मैं सारा दिन 1 गिलासों में पीऊँगी पानी, बाद में 1 में से दवाई खा ली, खाने के वो मेरे ग्लास लो, खाने की टेबल पे आएंगी, मेरा पानी के ग्लास लो। वो कहती है मैं क्यों नेकी से रोकूँ अपने बच्चे को। हम कहते हैं नहीं मैं खुद ही ले लूँगी, तो खुद ही लेंगे ना तो खुद ही करेंगे, फिर बाद में अगला पूछेगा नहीं कि अम्मा ने लेना तो है नहीं तो मैं क्यों बोलूँ। ये मिजाज पैदा करें, उनके अंदर तलब हो और आप उसको एक्सेप्ट करें, हाँ मेरा बच्चा कर, बिल्कुल कर, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये तुम करो, जो तुम जो तुम्हें नेकी मिले, और ये जुमला बोले हैं अल्लाह आपको नेकी दे, अल्लाह आपको नेकियों के मौके दे, तो फिर आप देखेंगे कि उनके अपने अंदर से ये तलब और ये अर्ज पैदा होगी, और ये काम करना हिकमत का तकाजा रखता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ भी है कि हर काम जो सुन्नत के मुताबिक होगा वही काबिले अजर है। वो बीवी को तलाक दे के जिहाद पे चले जाते तो बीवी जिहाद के नाम से खुश होती है या जलती कुड़ती? वो कहेगी खबरदार कोई मर्द जिहाद ना करे। क्यों? कि मर्द जिहाद पे जाने से पहले तलाकें देते हैं। अच्छा आप जिहाद को दूसरी तरफ ले आए, तबलीग करने जा रहे होते, अब आज तबलीगी जमात के नाम पे आपको पता है कि लोग 3 दिन के लिए भी जाते हैं, चिल्ला काटते हैं, 40 डेज के लिए जाते हैं, बस 3 मंथ्स के लिए जाते हैं। अब ये सारे जाने से पहले अपनी बीवियों को तलाक दे दें कि भाई आप पीछे होंगी, फिर हमें इस गिल्ट होगा, हम आपके कफील हैं तो इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। मुझे बताएं उनकी बीवियाँ कभी तबलीगी जमात का नाम सुनेंगी? वो तो कहेंगी कि कोई शादीशुदा बंदा तो कम अज़ कम इनको ना ज्वाइन करे। तो घरों के सुकून और खुशी के अंदर रहते हुए दीन का काम करें, फिर आपको खैर मिलेगी। वो वक्त कभी नहीं आएगा कि आपको बड़ा आइडियल माहौल मिल जाए। बस लोग कहते हैं जी फलां क्यों ना नेकी का काम करे, उनके तो शौहर इतने कोऑपरेटिव हैं, उनके तो घर वाले इतना साथ देते हैं। नहीं, ये क्यों देते हैं इसको भी तो समझिए, ये अल्लाह ने उनके दिलों में ये ख्यालात क्यों डाले हैं। तो वो दर्जा पैदा करे और अमल वो जो सुन्नत के मुताबिक, थोड़ा या ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर इसके बाद नबी सल्लम ने इस ज़ाब्ते और कायदे को उम्मत के लिए खूब अच्छी तरह वाज़े किया। एक रिवायत ये बयान करते हैं इमाम अहमद की हज़रत आयशा से, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, याद रखिए कि ये वो उस्मान नहीं है जो कि खलीफा सालिस थे, उनका क्या नाम है पूरा? उस्मान बिन अफ़ान। ये है उस्मान बिन मज़ऊन, जो वो हैं जिनके पास खाना काबा की चाबी होती थी। इनकी भी बड़ी शान है, कुरान की एक आयत इनके बारे में बयान की जाती है। तो बहरहाल इनकी बीवी खिजाब और खुशबू इस्तेमाल करती थी, खिजाब समझते हैं ना, बाल डाई करना। फिर इसने इनका इस्तेमाल तर्क कर दिया, वो मेरे यहाँ आई तो मैंने इससे पूछा तुम्हारे शौहर मौजूद हैं या गायब? इसने कहा मौजूद तो हैं लेकिन गायब ही के माने दें। अब ज़रा सुनिए बीवी का गम, बहुत सारी बीवियों को देखिएगा इस वक्त लगना ये हमारी कहानी आने लगी है, क्योंकि है तो सही पे ना होए बराबर। मैंने दरियाफ़ किया तुम्हारा क्या मतलब? उसने जवाब दिया उस्मान को ना तो दुनिया की रग़बत है और ना ही औरतों की चाहत है, मुराद है कि इतने नेक हैं, रात तहज्जुद में रहते हैं, दिन रोज़े में रहते हैं, उनको बीवी से कोई रग़बत नहीं, बीवी अच्छी लगे या बुरी लगे। हज़रत आयशा ने बयान किया कि मेरे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने इस सूरत हाल से आपको आगाह किया, आपने उस्मान से मुलाकात की और उससे फरमाया ए उस्मान क्या तुम्हारा इस चीज़ के साथ ईमान है जिसके साथ हमारा ईमान है? देखिए अंदाज़ कितना प्यारा है। उन्होंने अर्ज़ की जी हाँ अल्लाह ताला के रसूल। आपने फरमाया फिर हमारे उसवे यानी हमारे तरीके को क्यों थाम नहीं रहे? एक और रिवायत में आता है आपने फरमाया फस न कमा नस नाओ, तुम वैसे करो जैसे हम करते हैं। तो क्या पता चला कि आपने अपने सहाबी को इस बात की रग़बत दिलाई है कि आप इस तरह की हरकत ना करें कि अपनी बीवी को इतना इग्नोर कर दें कि उसको लगा ही ना हो। अब आप कहेंगे हमारे मियाँ को भी नहीं पता चलता हमने अच्छे कपड़े के पहने हैं बुरे पहने हैं, हम अच्छे पहन लें बुरे पहन लें, हम मेकअप करें ना करें, हमारे शौहर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितनी सिस्टर्स हैं जो ये कहती हैं। देखिए बहुत चीज़ें मुंह से नहीं बोली जाती, उसका एक हिडन इफेक्ट होता है। तो एक औरत में ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने शौहर को इन चीज़ों के लिए कैसे तैयार करे। वो भी तो देखते हैं ना कि हम घर में गंदे मंदे लहसुन प्याज अदरक की पुड़िया बने हुए और बाहर जाते हुए मेकअप करेंगे तो वो कहेंगे जिनके लिए किया फिर वो खुश हों। समझ रहे हैं आपको? अपने घर वालों का खुद एहसास दिलाए कि आपने उनके लिए ये काम किए। तो बहरहाल यहाँ से आपको दीन का मिजाज भी समझ आ रहा है। फिर अगली बात है कि अमल करने वाले की नीयत का अच्छा होना या बुरा होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी क्या है कि वह अमल सुन्नत के मुताबिक हो। जो पीछे वाक्यात पड़े हैं साद का और उस्मान का, दोनों की नीयतें तो बड़ी अच्छी थी लेकिन तरीका सुन्नत से हटा हुआ था। तो हमारे दीन में हर जज्बे की तस्कीन का पूरा मुकाम मौजूद है और हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला वाक्य है शौहर के घर से मुतल्लिका के निकलने पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा का एहतसाब। नोट करें, मुतल्लिका कौन सी? जो इद्दत में है। जब इद्दत गुजर जाती है फिर वो पाबंदियाँ और वो जो भी चीज़ें हैं वो और दूसरी तरफ होती हैं। बहरहाल यहाँ इस वाक्य को पढ़ते हैं कि इसमें क्या बात कही उन्होंने उनको। हज़रत आयशा के रूबरू एक ऐसी औरत का जिक्र किया गया जिसको तलाक़ बायना दी गई और वो दौरान इद्दत ही शौहर के घर से निकल गई। तलाक़ बायना क्या होती है? कि इसमें रजू का हक भी होता है, यानी एक या दो तलाक। और वो दौरान इद्दत ही शौहर के घर से निकल गई। इस पर उन्होंने इस औरत पर नक़द फरमाया। इसी तरह उन्होंने फातिमा बिनत कैस की इस राय पर भी इख्तसाब फरमाया कि तलाक़ बायना वाली औरत इद्दत के दौरान ही बिला उज़र खामन के घर से निकल सकती है। दलील क्या है इसकी, रिवायत पूरी पढ़ेंगे तो बात ज़्यादा समझ आएगी। इमाम मुस्लिम ने ये रिवायत कासिम से नकल की। उन्होंने कहा कि उरवा बिन ज़ुबैर ने आयशा के सामने ज़िक्र किया। उरवा क्या लगते थे आयशा के? भांजे थे, हज़रत अस्मा के बेटे थे। सवाल क्या था हज़रत आयशा का? क्या आपने हकम की फ़लां बेटी को नहीं देखा कि इसके खामन ने इसको तलाक दी और वो इसके घर से निकल गई, यानी तलाक के दौरान? आज हमारे यहाँ क्या तलाक तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले अभी झगड़े ही होते हैं तो घर से निकल जाते हैं लोग। कोई तसव्वुर है हमारे कल्चर में कि तलाक की इद्दत शौहर के घर में बीवी गुजारे? पहले ही झगड़े लड़ाइयाँ पड़ चुकी होती हैं, आप लोग जानते ही हैं अपने कल्चर को। देखिए उस दौर में ये बड़ा अजीब लगा कि अभी तो इद्दत चल रही थी और ये पहले से ही निकल गई। उन्होंने कहा हाँ इसने बुरी हरकत की है। उरवा ने कहा कि आपने फातिमा बिनत कैस की बात नहीं सुनी? उन्होंने फरमाया कि इस बात के जिक्र करने में इसके लिए खैर नहीं। हज़रत आयशा का फातिमा की राय पर नक्द का ये सबब था कि फातिमा के ख्याल में तलाक़ बायना की सूरत में औरत के लिए दौरान इद्दत शौहर के घर रहने का हक नहीं। हालांकि असल सूरत हाल ये थी, क्या हज़रत ने फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को उज़र के सबब शौहर के घर से निकलने की इजाज़त दी थी? तो वाक्य से बातें क्या निकलती हैं? पहली बात है कि अहले इल्म के सामने किसी की खामी नसीहत और इसलाह की गरज से जिक्र करना गीबत के दायरे में नहीं आता। हज़रत उरवा ने हकम की बेटी के गलत अमल और फातिमा के गलत फतवे का हज़रत आयशा के सामने जिक्र किया। दूसरी बात है एक मुफ्ती का दूसरे मुफ्ती का एहतसाब करना। हमारे यहाँ तो ये बहुत ही आम है, लोग दूसरों के फतवों को वैसे रिजेक्ट करते हुए दिखते किया जा सकता है जबकि इसका फतवा खिलाफ नस हो। नस कहते हैं दलील, यानी कुरान और सुन्नत में जिसकी नसूस नहीं मिलती, नस की जमा नसूस होती है, या इसने ख़ास हुक्म को आम कर दिया हो जैसे कि आयशा ने फातिमा का एहतसाब किया। तो आपको इस वाक़े से भी यही गाइडलाइन मिल गई कि किसी में अगर कोई बुराई देखी या खिलाफ सुन्नत अमल करते देखा तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया। अगला वाक्य है हज़रत आयशा का अबू सलमा को ज़मीन के तनाज़े से रोकना। अबू सलमा बिन अब्दुलरहमान ने हज़रत आयशा को बताया कि इनका कौम से ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। हज़रत आयशा ने ज़मीन के सिलसिले में किसी पर जुल्म के बुरे अंजाम से डराते हुए इन्हें इस तनाज़े से बाज रहने की तलकीन की। हदीस है बुखारी में मोहम्मद बिन इब्राहिम से अबू सलमा ने इन्हें बताया कि इनके और कुछ लोगों के दरमियान तनाज़ा था। उन्होंने इसका जिक्र आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किया तो उन्होंने फरमाया इस ज़मीन को छोड़ दो। यकीनन नबी सल्लम ने फरमाया जिसने बालिश्त भर ज़मीन का जुल्म किया इसको 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। यानी एक ज़मीन का टुकड़ा किसी ने नाजायज हथिया लिया तो उसके नीचे की 7 ज़मीनें उसको पहनाई जाएंगी। पता क्या चला? पहली बात है अद्दीनु अन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है और खैर ख्वाही की एक बेहतरीन शक्ल ये कि अपने अहबाब और मारिफ उर्फ से पहचान वाले यानी अपने दोस्तों और जान पहचान के लोगों को गुनाह से बचाने की कोशिश की जाए। हज़रत आयशा ने अबू सलमा के साथ यही तरीका इख्तियार किया। खैर ख्वाही ये नहीं है कि हर तनाज़े में, यानी अमूमन हमारे यहाँ खैर ख्वाह लोग कौन होते हैं जो आपके हर मामले में ज़रूरी कुछ ना कुछ बात करते हैं और टांग अड़ाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में बोला जाए, बल्कि क्या है कि हर हालत में अपने शनासा लोगों की तायद की जाए। ज़रूरी नहीं होता कि आप मवाफ़कत करें। ऐसा तर्ज अमल हकीकत में अपने ताल्लुक वालों के साथ जुल्म करना है। क्या समझे? है किसी की बात गलत और आप उसकी साइड लिए जा रहे हैं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना। फिर दूसरी बात है कि हज़रत आयशा ने अबू सलमा को ज़मीन के तनाज़े से दूर करने की गरज से जुल्म के इंजाम से डराया। तो बस अब हम अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, मसलन कोई एक की हक तलफी कर रहा है, मसलन चचा ने भतीजे का माल हथिया लिया या वरासत की बांड में ऊंच नीच कर दी, ऐसी चीज़ें तो आम है ना। तो फिर आपको हमें हदीस दिखाकर तरीके से उनको बात बताने की ज़रूरत है, ये मुराद है। और जुल्म का इंजाम हमेशा अंधेरा होता है, जब लोगों को उस बात में अपना बुरा इंजाम दिखेगा ना, तो वो यकीनन सोचेंगे कि ये जो बात कर रही हैं ये अपने लिए नहीं कर रही, बल्कि ये हमें बुरे इंजाम से बचाने के लिए कर रही हैं। फिर अगली बात यह कि हज़रत आयशा ने अपनी बात की सच्चाई में नबी सल्लम का इरशाद पेश किया, ये बात है असल में आपके मेरे अमल की। लोगों को आपकी मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, लंबी तकरीरें किसी को नहीं अच्छी लगती, छोटी सी हदीस कोट करके खामोश, मसलन यही जो वाक्य चल रहा है, आप देखते हैं कि आपके एक रिश्तेदार ने दूसरे की ज़मीन हथिया ली या उसका पैसा हथिया लिया, आपको लग रहा है कि उस पर ज्यादती हुई है, क्या करें, खूबसूरत तरीके से उस हदीस को लिखें, लिखी भी है कहीं तो उसका प्रिंट आउट करें, थोड़ी सी बात के साथ कि भाई मुझे थोड़ा सा शक है कि ये मामला हुआ है, आओ ये हदीस पढ़ लेते हैं, उसके बाद उठ के चले जाएं। एक बात याद रखें, यहाँ नोट करने की है, जब भी किसी को कोई अच्छी बात कहें या बुराई से रोके ना, तो थोड़ी देर बात करके उसको फिर खामोशी से सोचने का मौका दें। तर 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 बोलते जाएंगे ना, बोलते जाएंगे तो अगले का दिमाग नहीं चलता, फिर वो हमारी बात का असर ख़त्म हो जाता है। थोड़ी बात करें, हदीस बताई, अब उठ जाए वहां से। हम कहते हैं देखा पढ़ी ना हदीस, ये तो सारी तेरे पे बात आती है। अच्छा, मैंने बात लोगों को देखा, अल्लाह रहम करे, इस तरह लोगों को हदीसों से भी मत नफर करते हैं। मसलन आप में से मेरे में से कोई घर जाए, आज तो आपकी बातें हो रही थी, आज की हदीस तो पूरी आपके ऊपर आ रही है, क्या बेनमाजी काफिर है, और मेरे ख्याल में आप तो मुनाफिक है, क्यों कि हदीस पढ़ के आई हूँ, आज के फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पे भारी होती है, तो फिर आप तो पक्के मुनाफिक हैं। अब मुझे बताइए ये हदीस वो लेंगे, वो कहेंगे चलो चुप बैठो कल से क्लास में नहीं जाना। ये जो हम काम कर देते हैं ना, इसकी वजह से लोगों को और मौका मिल जाता है हमें दीन से रोकने का। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अपनी इसलाह की तौफीक दे। फिर अगला वाक्य है, माजा की रसाई बेटी को हराम खाने से इज्तनाब की ताकीद, यानी अकले हराम कह के हराम खाना, तो किस तरह से हुआ, माजा अदविया ने अपनी रजाई बेटी को इसकी तलकीन की थी कि हराम माल नहीं खाओ। हदीस है, हाफिज इब्ने जौजी ने अबू अब्दुर्रहमान सलमा से ये नकल किया है, उन्होंने क्या कहा कि माजा अदविया ने उम्मे अस्वद को दूध पिलाया था, उम्मे अस्वद ने बयान किया कि माजा अदविया ने इनसे फरमाया हराम खाकर मेरे दूध को ख़राब ना करना। नोट करें, हराम खा रहे हो तो जो दूध मैंने तुम्हें पिलाया था, यानी तुम मेरे लिए बुरे सदके जारिया ना बनो, ये मुराद है। मैंने तुम्हारी मुद्दत रज़ात के दौरान इंतहाई जिद्दोजहद करके हलाल खाया, खूब कोशिश करना ताकि सिर्फ हलाल ही खाओ, शायद किस तरह तुम्हें अपने मालिक की बंदगी और इसके फैसले पर राजी होने की सआदत मुयस्सर आ जाए। कितनी दिल में उतरने वाली बातें हैं कि देखो अल्लाह के बंदे हो और हराम खा रहे हो, रुक जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में जितना माल रखा है उस पर राजी हो जाओ। बड़ी दिलसोज बात है। क्या पता चला कि माजा अदविया ने उम्मे अस्वद को नसीहत करते वक्त इससे अपने पिछले ताल्लुक का जिक्र करके गालिबन इस बात की तरफ इशारा किया कि इनकी इस बात के पस मंजर में उम्मे अस्वद की खैर ख्वाही के सिवा और कोई मकसद नहीं है, यानी ताल्लुक भी इस बुनियाद पर करें कि आई एम योर वेल विशर, आई एम योर सिंसियर। दूसरी बात है कि माजा की ये नसीहत बहुत प्यारी है कि हलाल खाने और नेक अमाल के करने के बाहमी ताल्लुक को पेश किया। कुरान में क्या आता है, बड़ी खूबसूरत आयत है, या यूह रसुल कुलू मिनत तय्यिबात वामलु सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम, ए रसुलो पाक चीज़ों से खाओ और नेक अमल करो और यकीनन मैं तुम्हारे सब आमाल को जानने वाला हूँ। ये आयत नोट कर लें, रिस्क के हलाल का असर नेकियों की सूरत में दिखता है और रिस्क के हराम का असर गुनाहों के मौके के खुलने और औलाद की नाफरमानी की सूरत में निकलता है। ये अल्लाह ने एक क्राइटेरियन दे दिया है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी इस आयत के बारे में क्या कहते हैं कि ये दोनों का आपस में क्या मामला है, कहते हैं कि नेक अमाल के करने के हुक्म से पहले पाक चीज़ों के खाने का जिक्र करने में गोया इस बात की दलील है कि हलाल खाना लाजमी तौर पर नेक अमल से पहले हो, वरना क्या होगा, नेक अमल कबूल ही नहीं होगा। हम यहाँ आके बैठे, पेट में हमारे खाना हराम का था, तो हमारा ये बैठना पढ़ना पढ़ाना कबूल नहीं होगा, ये मुराद है। दूसरी बात देखिए कि दूध पिलाने वाली ख्वातीन को भी इस हकीकत को अपनी औलादों के जहनों में रासेख करने की कोशिश है, यानी अपने बच्चे को आप इस चीज़ पे कितना अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा देखो मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अब तुम गलत काम करोगे, जिस पेट में मेरा दूध गया है उस पेट में अब हराम जाएगा तो मुझे खुशी तो नहीं होगी। तो ये किस्म का इमोशनल टच है जो हमारे कल्चर में तो वैसे ही बड़ा मशहूर है कि जी मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, तो आज दूध ही नहीं है तो बख्शना का है, और डब्बे का दूध नहीं बख्शूंगी है। तो बहरहाल ये है कि ये जज्बाती अंदाज है। फिर इसी तरह अगला वाक्य, हज़रत आयशा का अपने भांजे को साथी समेत किसी के बाग से खाने पर डांटना। मदीना तैयबा के बाग में फैलांग कर हज़रत आयशा के भांजे और मैमूना के भांजे ने कुछ फल खा लिया जैसे बच्चे खा लेते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने डांटा। ये बात इमाम हाकिम ने हज़रत मैमूना के भांजे यजीद बिन असम से रिवायत नकल की है। क्या कहते हैं, आयशा के मक्का से वापस आते हुए मैं और इनका भांजा तलहा बिन उबैदुल्ला का बेटा रास्ते में इनसे मिले, वो इनका भांजा था, और इससे पहले इन्हें ये इत्तला मिल चुकी थी कि हमने मदीना के एक बाग में दाखिल होकर वहाँ से कुछ खाया है। उन्होंने अपने भांजे की खूब डांट डिपट की, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और मुझे मुअस्सर ये नसीहत करने की ज़रूरत है, कुरान में भी आता है कौलन बलीगा, पहुँचने दिल में उतरे। तो जब भी किसी को नसीहत करें ना तो पूछें ये मुअस्सर है, एक होता है मुअस्सर एक होता है मुअस्सर, मुअस्सर जो असर कर चुकी, मुराद यह कि मैंने वो बात करनी है जिसका दूसरे असर कबूल करें। और अगर आपको पता है ना कि मेरी इस बात से किसने मानना तो है नहीं, तो फिर चुप रहे, उठो, कोई नहीं उठा, आप शुरू हो गए, उठते नहीं, ये नहीं वो नहीं, कल भी ऐसे ही बता, परसों भी ऐसे बता, आज भी यही होना है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए एक गोली एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, 1 हफ्ता खाते हैं, आराम नहीं आता तो भी डॉक्टर से जाके गोली बदलते हैं ना। हम में से बहुत सारों को वल्लाही अपनी तबलीग की गोलियां बदलने की ज़रूरत है, स्टाइल चेंज करने की, तरीका इलाज बदलने की ज़रूरत है। कभी उस बच्चे के सर में हाथ रख के प्यार करके किस करके उसके हाथों को छूम के भी हमने बात की? कभी हमने अपनी बेटी बहू को बैठकर गले से लगाकर सिसकियों के साथ भी बात की? और इसमें भी मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो अपने रिश्तों में जज्बातियत दिलाकर लोगों को प्यार करते हैं, और वो फिर घर वाले कहते हैं कि आपके इस प्यार की वजह से मैंने अब नमाजें शुरू कर दी हैं, आपकी उस दिन की बात मेरे दिल में उतर गई। तो ऐसे ही बोलते जाना, बोलते ही जाना, मैं बोलती जाऊँ ना मेरी आवाज़ बाहर पहुँचे ना आपको आए, तो मुझे क्या बोलने का फ़ायदा हुआ? जब बात करें तो सोचें ये मौसर है। अच्छा, कुछ लोगों की बात में बड़ी तासीर होती है, कुछ में नहीं होती, वजह बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक ये बर मौका बात करना, अल्लाह से दुआ करना, दुआ किया करें, रब्बिशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बस लोग एक दफ़ा कहते हैं लोग मान जाते हैं, और बाद जब हम दसियों बार कहते हैं कोई नहीं मानता, तासीर नहीं है। तो मेरे अंदर तासीर क्यों नहीं, ये मेरे गुनाह है, मुझे ये देखना है अल्लाह मेरी बात क्यों नहीं मानते बच्चे, अल्लाह कोई मेरा मामला बिगड़ा हुआ है, या मेरा तरीका ठीक नहीं, या मेरा अपना कोई अमल तेरे साथ ख़राब है, अल्लाह तो मुझे माफ़ करके मेरे अंदर तासीर डाल दे। इस तरह बात करें। आपने सुना अगर डॉक्टर्स के नाम पे लोग कहते हैं फलां के हाथ में शिफा है फलां के नहीं है, देखिए डॉक्टर क्या करता है, ये भी बड़ी प्यारी मिसाल है तबलीग के नाम पे। मैं अक्सर सोचती थी छोटे होते हुए भी, जब नुस्खा डॉक्टर से लिखाते हैं दवा जाके बाहर डिस्पेंसर से लेते हैं, और वो कितनी देर लगा के दवा को चेक करके ढूंढ के देता है, ये इतनी खानी पीनी, तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि काम तो सारा ये कर रहा है, डॉक्टर ने क्या किया? डायग्नोस। डॉक्टर का काम सिर्फ तशखीस करना होता है, दवाएं तो डिस्पेंसर को ज़्यादा पता होती हैं, ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये हेपाटाइटिस है, ये कौन सा बुखार है। मेरी खुद नंद भी डिस्पेंसर हैं, तो मैं उनसे पूछती थी कि आपको कितना पढ़ना पड़ता है, कहती सेम लाइक एज डॉक्टर्स। वजह, डॉक्टर ने दवा लिखी और दूसरी तरफ आपने गलत दे दी, बात समझ रहे। इसी तरह एक और स्टूडेंट है हमारी नॉर्वे में, तो वो भी डिस्पेंसरी पे काम करती हैं, तो एक दिन किसी जगह मेरे साथ दर्स में जा रही थी, तो रास्ते में बातें हम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि कभी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ? कहती यस हुआ। क्या हुआ था? कहती जो दवा उसने लिख के दी, मेरे शुरू के दिनों की बात थी, तो जो दवा डॉक्टर ने दी थी वो सेम दवा मैंने ढूंढ के अंदर से दी, लेकिन उसकी पोटेंसी मैंने ज़्यादा दे दी, कि वो अगर उसकी 1/4 गोली खानी थी लेकिन उसमें एक गोली उससे 4 गुना बड़ी थी, तो वो गोली खाकर वो मरीज़ को कुछ होता है? कहती इतना बिटर एक्सपीरियंस था कि फिर मुझे उन्होंने जॉब से फायर कर दिया, कि वो गोली दे दी, जब मरीज़ ने खाई तो उस पर रिएक्शन हुआ। तो ये डॉक्टर का काम तो नहीं था, ये तो डिस्पेंसर का। तो डॉक्टर ने सिर्फ ये देखना है कि ये सिम्टम्स मलेरिया में होती हैं, ये टाइफाइड में होती हैं, कि किस में। आपका मेरा भी बस इतना ही काम है, आप अपने डिस्पेंसर ना बने, वो कंपाउंडर किसी और को रहने दें। अक्लमंद लोग कौन होते हैं जो सिर्फ अगले की वजह बता के ना, तुम्हारे बच्चे का ये इशू है, बस आगे तुम खुद जाना। सारा वक्त हर काम अपने हाथ में लेना, ये भी दुरुस्त नहीं होता। खुद ही डॉक्टर है, वो दवा निकाल ले, कूटे पुड़ी बनाए, टीका लगाए, फिर अगले मरीज को ले, कितने को ले लेगा। ये भी एक हमारी कमी होती है तबलीग में, हर काम ही अपने हाथ से ले लेते हैं। समझे, ये बात मैंने अपने बच्चे को बतानी है तो फ़ायदा होना है, या मेरे शौहर से कहलवाऊँ। बाज़वा बाप क्या था जुमला बच्चे को समझ आता है, तो मियाँ से रात को कन्वर्सेशन कर लें, कल मैं बात छेड़ूंगी, बाकी बात आपने करनी है, मैं नहीं बोलूँगी। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, अब आप अकेले मुझसे बात कर लें, बात ख़त्म। भाई आप बीच में निकल जाएं, ये जो ठोका ठाकियाँ करते हैं ना हर चीज़ में, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने कंधे आज़ाद रखें। हर वक्त हर फन मौला और वन मैन शो, ये तो नाकाम तरीन लोगों का काम है। अब कब तक करेंगे काम अपने, जब तक आप है, होते हुए भी लोग काम नहीं कर पाते, आखिर में इतनी बीमारियां लग जाती हैं। अपनी जिंदगी में लोगों को काम सौंप दें, बेस्ट थिंग, कामों को लोगों में बांट दीजिए। पीछे रहकर तमाशे देखें, अहले करम क्या करते हैं, और जो बच्चे गलतियां करें, घर वाले करें, शौहर करें, उनको समझाएं सुझाएं, काम अपने हाथ में ना लें। जो अपने हाथ में काम लेता है वो हमेशा याद रखे शिकवों का शिकार होगा कि लोग मेरे साथ काम नहीं करते, सारा कुछ मुझे करना पड़ता है, असल वजह दूसरे नहीं होते, आप होते हैं। अगला कहेगा आप ही करिए, अब अगले दिन अगला पूछेगा नहीं तो आप फिर रोएंगे कि अब तो पूछता कोई नहीं है मुझे। तो तबलीग में भी हर काम अपने हाथ में ना लें। मैं फिर शुरू से पढ़ती हूँ हक्के को। हज़रत आयशा के मक्का से वापस आते हुए मैं और इनका भांजा तलहा बिन उबैदुल्ला का बेटा रास्ते में इनसे मिले, वो इनका भांजा था। इससे पहले उनको ये इत्तला मिल चुकी थी कि हमने मदीना के एक बाग में दाखिल होकर वहाँ से कुछ खाया है। उन्होंने अपने भांजे की खूब डांट डिपट की, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और मुझे मुअस्सर नसीहत की। फिर उन्होंने फरमाया, क्या तुझे इल्म नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल फरमा दिया है? वल्लाही मैमूना की वफ़ात के बाद तुझे कोई पूछने वाला नहीं रहा, यकीनन वो हम में से सबसे ज़्यादा तकवा वाली और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाली औरतों में से थी। यानी आप देखिए कि उन्होंने उनकी मैमूना की खूबी बयान कर दी। फिर इस तरह इस वाक़े से क्या पता चला कि हज़रत आयशा ने डांट डपट की इब्तदा अपने भांजे से की। ये भी नोट करें, अपने पे ही तो मान होता है, अपने पे ही तो आपका गुस्सा चलता है, उसी पे लाड़ चलता है, उसी पे नाराज़गी चलती है, गैरों को कौन पूछता है? मुझे बताइए, आप यहाँ बैठे हैं इस गली में, कितने लोग गलत काम कर रहे हैं, किसी को क्या लगे? ये तो मोहब्बत की अलामत है और खैर ख्वाही की अलामत है कि आपको अपने में कोई बुराई दिखे और आप उसको पॉइंट आउट करें। दूसरी बात है कि हज़रत मैमूना के भांजे की बाजपुरस बात में की। अब देखिए दूसरे की खाला मौजूद नहीं है, लेकिन ये साथ दिला दिया कि तेरी खाला होती तो वो भी यही करती। तो इससे पता चलता है कि उस दौर की सारी खवातीन इस जज्बे से सरशार थी कि अपने बच्चों और अपने बहन भाइयों के बच्चों में कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। आज ये जो एटिकेट्स हैं ना, ये फजूल किस्म के एटिकेट्स हैं हमारे, ऊपर के मुँह चूमने, प्यार करने और किसी को किसी बुराई पर ना टोकना रोकना। ऊपर लाड तो बहुत अच्छा लगता है, लोग तो कहेंगे ये खाला बड़ी अच्छी है और ये पुप्पो बड़ी प्यारी है और ये मामी बड़ी अच्छी है, ये दुनियादारी के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन असल खैर ये है जो हज़रत आयशा और मैमूना के इस अमल से आपको मुझे दिखती है। फिर उसके बाद अगली बार देखिए कि इनका तर्ज अमल नबी सल्लम के उसवे हसना के मुताबिक था कि उन्होंने भी दावत तौहीद की इब्तदा अपने रिश्तेदारों से की। अल्लाह के नबी ने क्या किया था, वानजी रशीर अतकल अकरबीन, तो नबी सल्लम की दावत में भी ये तरतीब हुक्मे रब्बानी के मुतल्लिक थी। आपको पता होगा कि जब दूसरी वही उतरी थी, उसी के शुरू की वही में ये आयत थी कि वानजी रशीरत कल अकरबिन, सूरह शोरा में ये आयत आज भी मौजूद है। तो उसके बाद आपने अपने रिश्तेदारों को दावत दी थी, तो यहाँ पता चला कि रिश्तेदारों का भी हक होता है। फिर अगली बात है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने दोनों का एहतसाब करते हुए डांट डिपट की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के भांजों से ऐसी हरकत की तवक्को ना थी। इस किस्से में हज़रत आयशा का अदलो इंसाफ और शान व अज़मत नुमाया है कि उन्होंने अपनी सौकन हज़रत मैमूना कितने शानदार अल्फाज में तारीफ़ की। ये बड़ी अहम बात है, हदीस में आपने पढ़ा ना कि मैमूना की तारीफ़ की कि अगर मैमूना जिंदा होती तो ये करती, तो मैमूना आयशा की क्या थी, सौकन थी, तो सौकन की तारीफ़ की, इससे उनका दिल का खुलापन जाहिर होता है। ठीक है, फिर अगला क्या, हज़रत आयशा के शराब के साथ कंघी करने पर एहतसाब। एक शामी औरत, उसने हज़रत आयशा को बतलाया कि वो बेटियों की कंघी के दौरान शराब इस्तेमाल करती है, उन्होंने इसको ऐसा करने से मना किया। इसकी दलील इमाम हाकिम ने असबिया असलमिया, असलमिया कबीला, असलम तो उसी से, फिर असलमिया वही है, सहाबी के साथ आता है असलमी, कबीला असलम से ताल्लुक़ रखने वाले, तो ये कौन है, असलमिया। इन्होंने रिवायत नकल की और उन्होंने बयान किया, आयशा के यहाँ शाम से कुछ औरतें आईं, यानी शामी थी वो। तो आयशा ने दरियाफ्त किया, तुम किन में से हो? उन्होंने जवाब दिया, अहले खम्स में से। उन्होंने कहा, हमामों वाली? हमाम से मुराद गुसल खानों में जाके गुसल करने वालियाँ। उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ। आयशा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत की औरतों पर हमाम में जाना हराम है। क्यों? नेकेडली औरतें एक दूसरे के सामने शावर लेती हैं। अब आज इसको स्विमिंग पूल पे ले लें कि औरत औरत के ही सामने से, लेकिन बिल्कुल ही नेकेड है, तो वहाँ जाकर बैठना पसंदीदा नहीं है। इनमें से एक औरत ने कहा, मेरी बेटियाँ हैं, मैं इस मशरूब के साथ इनकी कंघी करती। उन्होंने दरियाफ्त किया, किस मशरूब के साथ? उन्होंने जवाब दिया, शराब के साथ। आयशा ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि खिंजीर के खून के साथ कंघी करो? उन्होंने अर्ज़ की, नहीं। तो उन्होंने फरमाया, वो शराब इसी की मानिंद है, यानी शराब को खिंजीर यानी पिग का खून कहा है अल्लाह के नबी ने। क्या पता चला? नंबर एक, हज़रत आयशा ने आने वाली औरतों में सबसे पहले ये सवाल किया कि वो किन लोगों में से हैं। मुखातबीन के मुतल्लिक आगाह होना दावत और एहतसाब की कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है, यानी ऑडियंस को पढ़ना, आप किन को तबलीग कर रहे हैं, ये इतना अहम होता है कि इसके बगैर बात करना बाज़ दफ़ा नुकसान का जरिया बन जाता है फ़ायदे की बजाय। दूसरी बात है, मेहमान नवाजी के शैतानी आदाब हज़रत आयशा के एहतसाब की राह में रुकावट ना बने। कितने ही मर्द और ख़वातीन ऐसी हैं जो एहतसाब के फरीजे को तर्क करने के लिए मेहमानों के झूठे अदब का हीला तराश करते हैं। हमारे यहाँ कितना कहते हैं, अब घर आए मेहमान को तो नहीं रोक सकते ना, अब घर में आए हुए थे बच्चे किसी के और उन्होंने टीवी खोल लिया और म्यूज़िक चला लिया, अब मना तो नहीं करते। तो ये भी गलत है, आपके घर आके कोई अल्लाह के हुक्म के नाफरमानी कर जाए तो ये तो आपके लिए बवाल वाली बात होगी। तीसरी बात है कि हज़रत आयशा ने औरतों को हमामों में जाने से रोकने की गरज से आ हज़रत के इरशाद ग्रामी से इस्तदलाल लिया, यानी यहाँ फिर हज़रत आयशा ने हदीस ही कोट की है। फिर हज़रत आयशा ने शराब के साथ कंघी करने की कबाहत और बुराई को वाज़े करने की खातिर खिंजीर के खून के साथ कंघी करने के मुतल्लिक औरत से सवाल किया, और इस तरह मिसाल के ज़रिए बात को समझाना कुरान और सुन्नत का एक साबित शुदा बेहतरीन उसलूब है। इस किस्से से बुराई से बचाने के लिए हज़रत आयशा का जज्बा सादिका यानी सच्चा जज्बा वाज़े होता है। मिसाल से वही समझाने की कोशिश करता है जिसके दिल में बात जहन नशीन करवाने की सच्ची तड़प हो, यानी मिसाल देकर बात क्लियर हो गई ना। अब आपके दिल में शायद ये आ रहा होगा कि वो शराब से कंघी कैसे करती थी, तो उसको ऐसा जेल यूज़ करना या बालों को सेट करना, हर दौर की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो वो कोई इस तरह के अरब लोगों के कल्चर में था कि वो कंघी को डिप करके जब करते थे तो बाल सीधे रहते थे। तो बहरहाल ये एक वाक़िया था जिसमें वही सेम रूह चल रही है कि बुराई देखकर चुप नहीं रहना, दूसरों को बुरा काम करता देखकर रोकना है, तो दलील हदीस से या कुरान की आयत से देनी है। ठीक है।